राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीरा वन चारी,
यमुना तीरा वन चारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन,
जय यशोदा नंदन व्रज जन रंजन,
यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वन चारी,
यमुना तीरा वन
चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधा,
राधा माधव राधा माधव राधा माधव
राधा, दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे,
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा,
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा।
जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद
प्रभुपद
जय जय प्रभुपद पच्चीस श्लोक क्रमांक 21 से प्रारंभ करेंगे। तितिक्ष्व कारुणिका
तितिक्ष्व कारुणिका
सुहद सर्वदेहिना
सुहद सर्वदेहिना
अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा
साधव साधु भूषणा
मय्यन्येन भावेन
मय्यन्येन भावेन
भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा
भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा
मत्कृते त्यक्त कर्माण
मत्कृते
त्यक्त्वा स्वजन बांधवा
त्यक्त्वा स्वजन बांधवा
मदाश्रया कथामृष्टा
मदाश्रया कथामृष्टा
शृण्वन्ति कथयन्ति च
शृण्वन्ति कथयन्ति च
तपन्ति विविधास्तापा
तपन्ति
नैतात्मदत चेतस
नैतात्मदत चेतस
त एते साधवः साध्वी
त एते साधवः साध्वी
सर्वसंग विवर्जिता
सर्वसंग विवर्जिता
संगस्ते श्वतते प्रार्थ्य
संगस्ते श्वतते प्रार्थ्य
दोष हराती है
संग दोष हराते।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति दिवसीय इस भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया भगवान कपिल देव माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं, कहे मां इस संसार में समस्त भौतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान मात्र भक्ति से हो सकता है, और भक्ति एकमात्र भक्तों के संग से प्राप्त हो सकती है। भक्ति मात्र भगवान के भक्त संतों का समागम करने से ही प्राप्त होती है। तब माता देवहूति पूछती है, तो प्रभु आप बताइए संत किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? प्राय इस संसार में बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि हम साधु किसे समझे। क्या धोती कुर्ता पहना है तो साधु हो गए हैं? तिलक कंठी करने से कोई साधु हो जाता है? बाल मुंडन कर देने से कोई साधु हो जाता है? साधु किसे कहते हैं? क्योंकि इस संसार में साधुओं से ज्यादा असाधुओं की संख्या है, इसलिए पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें सच्चा साधु कौन है। साधुओं को उसके वेश से नहीं, साधुओं को उसके गुणों से पहचाना जा सकता है। गुण होने चाहिए, ये गुण जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। व्यक्ति गुणों से ही महान बनता है। बाहरी दिखावे से मात्र व्यक्ति महान नहीं होता है। यदि गुण अच्छे हैं तो व्यक्ति सदैव अच्छा माना गया है। गुण होने चाहिए, तो साधुओं के गुण क्या है? भगवान कपिल देव कहते हैं, तितिक्ष्व कारुणिका सुहद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधु का गुण बताते हुए भगवान कपिल देव प्रथम गुण कहते हैं तितिक्ष्व। तितिक्ष्व का अर्थ होता है सहनशील। साधु का प्रथम गुण है सहनशीलता। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, भक्त होते हैं, सहनशील होते हैं। किसके प्रति? कहते हैं सर्वदेही नाम, किसी भी देहधारी जीव से, चाहे मनुष्य पशु या किसी से भी, यदि साधु को भक्त को दुख मिलता है तो उस दुख का प्रतिकार नहीं करते हैं, उसे सहन कर लेते हैं। साधु का प्रथम गुण है सहनशील। जैसे कैसी भी विकट से विकट स्थिति भी आ जाए तब भी उद्विग्न न होना। सर्दी हो, गर्मी हो, मान अपमान, भूख प्यास, ये सभी दुख को, विकारों को सहन कर लेना, इसे साधु कहते हैं। कभी कभी भक्त भी विचलित हो जाते हैं। इष्टदेव प्रभु पूछते हैं कि आप आज मंगला आरती में क्यों नहीं आए? प्रभु जी ठंडी बहुत थी ना, इसलिए नहीं आ पाए। इसे साधु नहीं कहते हैं। कितनी भी ठंडी हो, गर्मी हो, परंतु मार्गाम न चलेत, परंतु अपने भक्ति मार्ग से जो थोड़ा भी विचलित न हो, उसे सहनशील कहते हैं। हम सबको सहनशील बनना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय ने मेरा आवाज कम करो जरा। हरे कृष्णा 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 हरे। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। उस 24 गुरुओं में सबसे पहला गुरु पृथ्वी थी। पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण की? सहनशीलता। आप देख रहे हो ये पृथ्वी, हम जिसके ऊपर रह रहे हैं इसे पृथ्वी कहा जाता है। और ये पृथ्वी जो है मूर्तिमान स्वरूप है। वेदों में हमारी 7 मां गिनाई गई है, जन्म देने वाली, पालन करने वाली, दूध पिलाने वाली गाय, उनमें से एक है पृथ्वी माता। हम इस मां के ऊपर रह रहे हैं और जो पृथ्वी हमें जीवन दे रही है, इस पृथ्वी के ऊपर हम हल जोतते हैं। देवी पृथ्वी के ऊपर जब हल चलता है तब उसे इतना दर्द होता है जैसे आपके शरीर के ऊपर, आपके हाथ के ऊपर कोई चक्कू घुसा दे और फिर घसीटे, जितना दर्द होता है उतना देवी पृथ्वी को होता है जब कोई हल चलाता है। इस पृथ्वी के ऊपर बोरिंग करते हैं, ड्रिल करते हैं, बहुत कष्ट होता है, लेकिन पृथ्वी उफ तक नहीं करती है। इसे कहते हैं सहनशीलता। पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टकम में, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। यदि सदा हरि कीर्तन करना है तो वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील होना चाहिए। आप वृक्ष को देखते हो, ठंडी हो गर्मी हो, ठंडी को सहन करता है, गर्मी को एक स्थान पर खड़ा रहता है। हम तो बारिश आ जाती है तो छाता या रेनकोट पहन लेते हैं, परंतु वृक्ष सब कुछ सहन करता है। और उसके ऊपर यदि कोई वृक्ष के ऊपर पत्थर मारता है तो ऐसे व्यक्ति को भी वह फल प्रदान करता है। वृक्ष जेन काटी लेह किछु न बोलाए। और यहां तक कि वृक्ष को यदि कोई काट भी देता है तब भी वह कुछ नहीं बोलता है। तो इस प्रकार हमें हमारा कोई अपमान कर दे, कोई गाली दे दे, थप्पड़ मारने की बात दूर रही, एक साधु को कोई काट भी देता है तब भी मुख से कुछ नहीं बोलता है। इसे साधु कहते हैं, सहनशील, सहन करते हैं। और आज तो संसार में सहनशील नाम की वस्तु ही नहीं है। सहनशीलता साधु का प्रथम गुण है। और साधु बहुत प्रकार की वस्तु को सहन करता है, ठंडी गर्मी गरीबी ये सब तो सहन करता ही है। साथ ही साथ साधु जो होता है अपमान को भी सहन कर लेता है। कोई व्यक्ति ही किसी संत का, साधु का अपमान कर दे, वो थोड़ा भी प्रतिकार नहीं करता है, सह लेता है। जैसे हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिए परंतु कृष्ण के परम भक्त थे। और हरिदास ठाकुर को देखकर अनेक मुसलमान कृष्ण की भक्ति को स्वीकार किए। तो वहां के जो मुकुल थे, वहां के जो राजा थे, हरिदास ठाकुर को अपने राज दरबार में बुलाए और वह मुसलमान राजा हरिदास ठाकुर को बहुत धमकाया। हरिदास तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे। बोले क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे मजहब को छोड़ दिया है। हमारा मजहब कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना है, और तुम ये नमाज पढ़ना छोड़कर कृष्ण भक्ति कर रहे हो। कृष्ण भक्ति करना छोड़ दो। हरिदास ठाकुर ने कहा, हम नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत धमकाया, बहुत प्रयास किया, परंतु हरिदास ठाकुर नहीं छोड़ा। अंत में क्रोधित होकर उस मुसलमान राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ इस हरिदास ठाकुर को लेकर और 22 बाजार में इसे हंटर और कोड़े से पीटते रहो। इतना पीटो, इतना पीटो, इतना मारो इसे ताकि इसके प्राण निकल जाए, और 22 बाजार में पीटो ताकि आने वाले संसार में लोग कृष्ण की भक्ति करना भूल जाए। हरिदास ठाकुर को लेकर गए। 22 बाजार में पीटने का अर्थ एक गांव एक के एक बाजार में लेकर जाते और इतना पीटते, इतना पीटते, जब तक वो मूर्छित न हो जाए तब तक पीटते रहते। और कुछ समय के बाद जब उसे होश आता तब दूसरी बाजार में वहां पर पीटते। 22वें बाजार में जब हरिदास ठाकुर को पीटा जा रहा था, हरिदास ठाकुर एक एक कोड़े के ऊपर भगवान का महामंत्र बोलते जा रहे थे। तब जल्लादों ने, चार चार जल्लाद मिलकर एक भक्त को मार रहे हैं, थोड़ा भी प्रतिकार नहीं किया, और प्रत्येक कोड़े पर महामंत्र। वह जल्लाद कहने लगे, हरिदास 22 बाजार से हम तुमको पीटते आए हैं और अब मर जाओगे, अब तो हरिनाम लेना बंद कर दो। तब हरिदास ने इतना ही कहा कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, परंतु यदि जीवा अच्छी रही, मरते दम तक मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। खंड खंड होई यदि ये तन प्राण, ताबू ना बदने आमी ना छाड़ीबू हरिनाम। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु हरिनाम इस हरिदास के मुख से बंद नहीं होगा। इसे कहते हैं सहनशीलता। ये तो 16 माला रोज जप कर रहे हैं, एक दिन बीमार हो गए तो माला बाजू में रह जाती है। आज तो हम बीमार हैं, आज माला नहीं करेंगे। सहनशीलता इसे कहते हैं हरिदास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु जगाए मधाए को उपदेश देने के लिए गए थे और मधाए ने शराब का मटका लेकर हरिदास ठाकुर के मस्तक पर मारा, खून निकलने लगा नित्यानंद प्रभु के ऊपर। चैतन्य साक्षात भगवान क्रोधित हो गए। चैतन्य महाप्रभु हाथ में सुदर्शन चक्र ले लिए, परंतु उस समय भी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, प्रभु आप इस मधाई को मत मारिए, इस पर कृपा दीजिए। देखिए भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा सहनशील होते हैं। भगवान से भी, भगवान से सहन नहीं हुआ, भगवान ने चक्र हाथ में ले लिया, परंतु एक भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु छोड़ दीजिए इसे। इस प्रकार सहनशील बनना चाहिए। कोई भी हमारा अपमान कर दे तो उसे सह लेना। देखिए अपमान को सहना आसान है, परंतु मान और सम्मान को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक साधु होता है, वह अपमान को भी सहन कर लेता है और मान को भी सहन करता है, सम्मान को। सम्मान को सहन करना बहुत मुश्किल है। सम्मान करते हैं, लोग प्रशंसा करते हैं, आदर देते हैं, और फिर धीरे धीरे उस सम्मान की आदत पड़ जाती है। और जैसे ही भक्त का सम्मान होने लगता है तो फिर वह अपने आप को महान समझने लगता है। और भक्तों, शास्त्र का एक सिद्धांत है, जो भक्त अपने आप को महान समझता है वह सबसे गिरा गुजरा हुआ भगत है। शास्त्र का सिद्धांत बहुत उल्टा है इस भौतिक संसार से। भक्ति में जो अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, भक्ति में अपने आप को जो सबसे ग्रेट और महान समझता है, और बहुत निम्न भक्त है, तुच्छ है, थर्ड क्लास का। और भक्ति में जो अपने आप को हीन समझता है, अरे मैं तो कुछ नहीं हूं, वो सबसे महान भक्त है, महान भक्त है। चैतन्य चरितामृत में कहा है, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध, सही मान मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। वास्तव में जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है, जो कृष्ण से पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम करता है, वह तो यही समझता है कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, मैं तो बहुत नीच हूं, अधम हूं, पापी हूं। शुद्ध भक्त यह समझता है, नम्र होता है, नम्रता होनी चाहिए। आपने देखा होगा जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं वह डाली सदैव झुकी हुई रहती है, और कुछ वृक्ष के ऊपर फल नहीं लगते हैं, बिल्कुल सीधा होते हैं, सीधा खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस भक्त के हृदय में प्रेम रूपी फल का उदय हो गया है, वह भक्त सदैव झुका हुआ रहता है, सदैव झुका हुआ। और जो केवल नाम का साधु है, नाम का भक्त है, वह झुका हुआ नहीं दिखेगा, वह तो अपनी बड़ाई करेगा, स्वयं अपने मुख से अपनी प्रशंसा। तो साधु का स्वभाव, सबसे पहला साधु में गुण होना चाहिए तितिक्ष्ण, सहनशील, विकट से विकट स्थिति को भी सहन कर ले, इसे साधु कहते हैं। तत्पश्चात वास्तव में एक एक गुण के ऊपर एक एक प्रवचन हो सकता है, परंतु हमारे पास समय का अभाव और माया का प्रभाव, ये दोनों है। समय का अभाव इसलिए क्योंकि अंतिम दिन है, और माया का प्रभाव इसलिए यदि ज्यादा व्याख्या हुई तो नींद आ जाएगी। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए ज्यादा व्याख्या न करते हुए, आप सब बुद्धिमान है, समझ सकते हैं। साधु का प्रथम गुण तितिक्ष्व, सहनशीलता। तत्पश्चात साधु का दूसरा गुण बताते हैं कारुणिका। कारुणिका का अर्थ होता है दयालु। शिवाचार्य स्वामी कहते हैं, करुणा का अर्थ होता है पर दुख हानि इच्छा। पर दुख हानि इच्छा, करुणा का अर्थ होता है दूसरों के दुख को देखकर हृदय में दुख होना और उसके दुख को दूर करना। साधु का दूसरा गुण क्या है? साधु जो होते हैं दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हैं, वे दूसरों के दुख को देख नहीं सकते हैं। साधु के हृदय में दया होती है। और यहां पर एक शब्द जो है आपको ध्रुव शब्द कहा जाएगा, इसे सब गुणों के साथ लेना है, सर्वदेही नाम। इस श्लोक में सर्वदेही नाम शब्द है, सबके साथ तितिक्ष्व सर्वदेही नाम, सहनशील सबके प्रति। और दूसरा है कारुणिका सर्वदेही नाम, केवल मनुष्यों के प्रति ही दया नहीं, संसार के सभी जीवों के प्रति ही एक संत की दया होती है। मनुष्य के ऊपर तो कृपा करते ही हैं, साथ ही साथ तुच्छ से तुच्छ जीव के ऊपर भी संत दया करते हैं।
उनके हृदय में दया होती है, दया की भावना होती है, साधु दयावान होते हैं। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते सूर्यदेव को जल अर्पण कर रहे थे। तो जैसे उन्होंने जल अंजलि में ग्रहण किया तो एक बिच्छू उसके हाथ में आ गया। बेचारा चल रहा होगा, किनारे पर डूब गया था। तो बिच्छू हाथ में आया, संत ने सोचा कि इस बिच्छू को किनारे लगा दूं ताकि बेचारा सुखी हो जाए। वो संत उस बिच्छू को उठाकर नदी किनारे रखने गए। अब जानते हो बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना। बिच्छू ने उस संत के हाथ में डंक मार दिया, वह हाथ कांप गया और संत के हाथ से बिच्छू गिर गया। लेकिन फिर से संत ने उस बिच्छू को उठाया और लेकर जा रहे थे, फिर से डंक मारा, फिर से गिरा। 3-4 बार उस बिच्छू को उठाया और गिरते जा रहा है। तब रास्ते में 2-3 लोग जा रहे थे, कहा महात्मा जी अब छोड़ दो उस बिच्छू को, आप नहीं जानते हो बिच्छू का स्वभाव ही होता है डंक मारना, छोड़ो। तब उस संत ने इतना ही कहा कि इस प्रकृति का, इस संसार का एक छोटा सा जीव जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं तो संत हूं, महात्मा हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं, मैं मेरा स्वभाव कैसे भूल सकता हूं। संत का स्वभाव होता है कारुणिक, का दूसरों के दुख को दूर करना, सदैव दूसरों के दुख को दूर करते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी 70 साल की आयु थी, बूढ़े हो चुके थे, परंतु देखा कि जगत में सब लोग दुखी हैं। जगत के दुखों को दूर करने के लिए श्री प्रभुपाद जी 12 वर्ष तक राधा दामोदर मंदिर में रहे और फिर उस राधा दामोदर मंदिर में बैठकर रूप गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि का दर्शन करके उन्होंने भगवत गीता और भागवत का अनुवाद किया। गीता और भागवत का अनुवाद क्या किया, एक बहुत बड़ा बम तैयार किया है? और उस बम को लेकर प्रभुपाद अमेरिका में गए और अमेरिका में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने वह बम फोड़ा। अमेरिका ही नहीं, पूरा संसार उस बम से प्रभावित हो गया और सबके मुख पर हरिनाम आ गया, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
दया होनी चाहिए दूसरों के जीव के प्रति, सर्वदयिना। कहना तो नहीं चाहते हैं परंतु कहना पड़ता है। इस संसार में कुछ धर्म वाले अपने आप को धार्मिक मानते हैं, कुछ ऐसे धर्म हैं उनके लोग अपने आप को संत साधु समझते हैं और वह साधु पशु हिंसा करते हैं, मांस खाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। अरे धर्म के 4 चरण हैं, धर्म 4 पांव पर खड़ा है और उस धर्म का 1 चरण है दया। जिसके हृदय में दया नहीं होती है वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। मछली खाने वाले, पशुओं को मारने वाले, बकरे काटने वाले, ये कभी धार्मिक नहीं हो सकते हैं। न तो वह किसी धर्म का पालन करते हैं, न तो वह धार्मिक है। धर्म का अर्थ है दया, दया होनी चाहिए साधुओं के हृदय। ये तो साधु ही उपदेश देते हैं, काटो काटो और खाओ, क्या ये धर्म है, क्या ये दया है? और उसमें उनके साधु लोग प्रवचन करते हैं, एनिमल हैव नो सोल, ये जो पशु हैं उसमें कोई आत्मा भात्मा नहीं है, अंडे में कोई जीवन नहीं है, आप लोग खाते रहो, बिंदास खाओ और संडे टू संडे आ जाया करो। परंतु वह मूर्ख लोग नहीं जानते हैं जब किसी वृक्ष में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बोस ने साबित किया, पढ़ा था तीसरी कक्षा में हमने, कि वनस्पति में जीवन है। जब वनस्पति में, ये पेड़ और पौधे में जीवन है, सोल है, आत्मा है, तो क्या चलने फिरने वाले पशु में आत्मा नहीं है? अपने आप को धार्मिक समझने वाले हैं, संत समझने वाले ही असाधु है। जानना चाहिए कौन संत है। कारुणिका, हृदय में करुणा होनी चाहिए, तितिक्ष्व कारुणिका। और इसके बाद तीसरा गुण बताते हैं, सुहृद सर्वदेहिनाम। सुहृद का अर्थ होता है अकारण हितेशी, दूसरों का हित करना। देखिए, करुणा और सुहृद में दो अर्थ, दो अंतर है। करुणा का अर्थ होता है दूसरों के दुख दूर करने की भावना, और सुहृद का अर्थ होता है दूसरों को सुखी करने की भावना। संत का तीसरा गुण, वे दूसरों को सुखी करना चाहते हैं। स्वयं भले दुखी है, स्वयं को भले कितना भी कष्ट उठाना पड़े, परंतु दूसरों को सुखी करना ये साधु का स्वभाव है। एक साधु का जीवन, संत का जीवन मोमबत्ती की तरह होता है। खुद तो पिघलते रहते हैं, खुद जलते रहते हैं, परंतु दूसरों को प्रकाश देते हैं। जैसे अगरबत्ती खुद जल जाती है, राख हो जाती है, परंतु दूसरों के लिए सुगंध छोड़ जाती है। संत का जीवन ऐसा होता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों का हित चाहते हैं, साधु का ये स्वभाव है। देखिए, भगवान कपिल देव ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो धोती कुर्ता पहनते हैं, कंठी और तिलक करते हैं, वही साधु है। इसका तो जिक्र ही नहीं हुआ है। चाहे पैंट शर्ट में भी बैठा हो या जींस और टी शर्ट में बैठा हो, परंतु ऐसा गुण यदि उसमें है तो वह साधु है। प्राय साधु शब्द सुनकर हमें बस यही याद आता है कि मुंडन किया हुआ है, बड़ी बड़ी शिखा है। नहीं, वस्त्र और वेशभूषा से कोई साधु नहीं होता, गुणों से होता है। और साधु के गुण तितिक्ष्व, कारुणिका, सुहद, और आगे कहते हैं अजात शत्रव सर्वदेहिनाम। साधु उसे कहते हैं जिसका कोई शत्रु नहीं होता है। साधुओं का कोई शत्रु नहीं होता है। ये अजात शत्रु महाभारत में युधिष्ठिर महाराज के लिए शब्द आया है। युधिष्ठिर महाराज को वेदव्यास जी ने अजात शत्रु कहा। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, वे साधु थे। तब आप लोग कह सकते हो, ये कौरव लोग युद्ध करने के लिए तो खड़े थे, क्या ये शत्रु नहीं थे युधिष्ठिर के? हाँ, दुर्योधन युधिष्ठिर को शत्रु मानता था। दुर्योधन के पक्ष में जितने भी थे सब लोग युधिष्ठिर को शत्रु मानते थे, परंतु युधिष्ठिर किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। युधिष्ठिर सबको अपना मित्र मानते थे। इसलिए आपने यदि भागवत ठीक से पढ़ा है तो पता होगा, महाभारत के युद्ध के बाद, उस महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर विजयी हुए, तो विजयी होने के बाद तो खुश होना चाहिए ना। आज का नेता यदि चुनाव में यदि जीत जाता है तो कितने पटाखे फूटते हैं, जुलूस निकलता है, कितने खुश होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तो पूरी दुनिया का, ये महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, लेकिन युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर इतना रोए, एक दो दिन नहीं, महीनों भर युधिष्ठिर महाराज रोते रहे। भागवत में यह प्रसंग है। यहां तक कि वेद व्यास ने समझाया, सुखदेव गोस्वामी ने, कृष्ण ने भी समझाया, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के हृदय में यह भावना थी कि मेरे द्वारा, मेरे कारण मेरे मित्रों का वध हो गया। इसे कहते हैं अजात शत्रु, जिसका इस संसार में कोई शत्रु न हो। उसे कहते हैं अजात शत्रु। युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं। तो एक साधु किसे कहते हैं? साधु कभी भी ही किसी के प्रति मतभेद मनभेद नहीं रखता है, वे सबको अपना मित्र समझता है, ये है साधु। साधु का कोई शत्रु नहीं। षड गोस्वामियों के विषय में आया है, धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करो, षड गोस्वामी अष्टकम। ये जो हमारे षड गोस्वामी थे, रूप सनातन जीव, गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, ये गोस्वामियों के प्रति ही जो भक्त थे, वह तो छह गोस्वामियों को प्रेम करते ही थे। धीर व्यक्ति तो प्रेम करते थे, परंतु अधीर व्यक्ति भी इनसे प्रेम करते थे, अधीर लोग भी, कोई शत्रु नहीं था। यह है साधुओं का स्वभाव। उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि अपने आचरण से सबको जीत लेते हैं। तत्पश्चात साधु का पांचवा गुण बताते हुए कहते हैं शांत। साधु जो होते हैं शांत होते हैं। शांत माने कभी क्रोध नहीं करते हैं। साधु कभी क्रोध नहीं करते हैं। और शांत माने वे उत्पाती नहीं होते हैं, यहां भागो वहां भागो, यहां से कमा लो यहां से कमा लो, शेयर बाजार से कुछ कमा लो। साधु साधुओं का चित्त जो होता है, मन जो होता है, शांत होता है। तो भगवान की कृपा से जो भी हो रहा है शांत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरे भक्त सदैव शांत रहते हैं। कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निश काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलीय शांत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण के जो भक्त होते हैं शांत होते हैं, उद्विग्नता नहीं होती है। शांत का अर्थ होता है कि उनके सामने कितने भी विषय आ जाए, अच्छे से अच्छा फिल्म चल रहा हो, प्रैक्टिकल में आपको बताऊं, मान लो उनका फेवरेट और अच्छे से अच्छा फिल्म चल रहा हो, लेकिन फिर भी वह न देखे। कुछ लोग होते हैं बैठ जाते हैं, चलो ना एक दो घंटे में क्या फर्क पड़ता है, और कौन भक्त देख रहा है हमको। ये भक्त जो होते हैं उसे भगवान का उतना भय नहीं होता है जितना भक्तों का होता है। सोचते कौन भक्त देख रहा है, उसे यह नहीं पता है कि भगवान तो देख रहे हैं। आप लोग को अनुभव होगा, जब हम घर पे माला जपते हैं तो चलते फिरते, कभी खाते खाते, फोन में बात करते करते, कभी सोते सोते, कभी लेटे लेटे माला करते हैं, और मंदिर में आकर जब माला जपते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं सबके बीच में। क्यों भाई, अब क्या हुआ? बोले भक्त लोग बैठे हैं ना, और उसमें सब भक्त बैठे हैं, और माला जपते जपते जबकि आ गई तो तुरंत आजू बाजू में देख, किसी ने देख तो नहीं लिया। भगवान से ज्यादा भक्तों का भय होता है। तो शांत का अर्थ होता है इंद्रियों के विषय सामने होते हुए भी उसे स्वीकार करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शांत, कई सारे इंद्रियों के विषय, जैसे रास्ते से जा रहे हैं कोई भक्त, कंठी है, तिलक है, और कोई दुकान में गाना बज रहा है, और पुराना गाना अपना फेवरेट है, तो खड़े रह गए 2-5 मिनट, चलो भाई सुन लेते हैं। इसे शांत नहीं कहते हैं। कितने भी सुंदर विषय भोग अपने सामने आ जाए और अनुकूलता हो, कोई देख न रहा हो, लेकिन फिर भी उसे छोड़ दे, उसे शांत कहते हैं। जैसे भागवत में शांत भक्त की उपमा समुद्र के साथ की गई है। समुद्र में अनेकों नदियां प्रचंड वेग से समुद्र में आकर मिलती हैं और निरंतर वह नदियां समुद्र में आती हैं, मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी ओवरफ्लो हुआ? कभी नहीं, उतना है। वैसे अनेकों विषय भोग अनेक इंद्रियों के द्वारा यदि आ रहे हो, परंतु फिर भी भक्त उसे स्वीकार न करे, वह शांत है, तो वास्तव में उसे शांत कहा जाता है। भागवत में यह शांत शब्द 2 भक्तों के लिए आया है, एक प्रहलाद महाराज और एक सुदामा। कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरंत विरक्त इंद्रियार्थेशु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रशांत, पूर्ण रूप से शांत, इतना ही समझिए। मान लो प्रैक्टिकल रूप से कहूं तो किसी बच्चे ने अपने पिता को घर से निकाल दिया हो, यह दुख। ऊपर से उस पिताजी का एक्सीडेंट हो गया हो, दोनों पांव कट गए, हॉस्पिटल में है, ये दुख। ऊपर से उस हॉस्पिटल का कुछ बिल है, उतना पैसा उसके पास नहीं है, यह दुख। ऊपर से उनके लड़के उनकी पत्नी सब उनको गाली दे रहे हैं, ये दुख। ऊपर से बुढ़ापा निकट आ रहा है, ये दुख। और ऊपर से डॉक्टर का बिल मांग रहे हैं, पांव में दर्द हो रहा है, ये सब दुख होते हुए भी वे अपने नाम जप को, भगवान के महामंत्र को, भक्ति को कम न करे, तब माना जाएगा कि ये शांत है। और यहां तो थोड़ी सी भी सर्दी हो जाती है, आज माला नहीं कर पाएंगे, आज प्रवचन में नहीं जा पाएंगे, बोले क्या हुआ, थोड़ी ठंड लग गई है। कि हमसे जो बराबरी वाला है ना, वो खुला सब कुछ कह देता है, तू ऐसा है ऐसा है, इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता है, होता है ना। जो जो सच सच बता देता है वो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो सत्य है लेकिन फिर भी कड़वा लगता है, इसलिए हम उसके साथ रहना नहीं चाहते। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति उसके साथ रहेगा, क्यों? उससे कृपा नहीं मिलेगी, कृपा तो बड़ों से मिलती है, परंतु उसके साथ रहने से हम में क्या कमी है वह हम जान सकते हैं। हमारी कमी को अन्यथा कोई नहीं बता सकता है, गुरु महाराज भी नहीं बता सकते हैं, ये राधानाथ स्वामी का कहना है। क्योंकि बेचारे गुरु महाराज हमसे कितने दूर रहते हैं, साल में 2-3 बार मिलते हैं। हमारी बराबरी वाले हमारी जितनी कमी बता सकते हैं उतना और कोई नहीं बता सकता। तो कम से कम एटलीस्ट हमारी कमी जानने के लिए हमारी बराबरी वालों के साथ रहना चाहिए और उस कमी को जानकर उसे पूरी कर देनी चाहिए। भक्तों को बुद्धिमान बनना है। तो इस प्रकार साधु जो होता है, तीनों प्रकार के लोगों के साथ ठीक से व्यवहार करता है। आगे साधु का गुण बताते हुए कहते हैं, मई अनन्येन भावेन। हे मां, साधु वो है जो अनन्य भाव से मई मेरी भक्ति करता है। वास्तव में संसार में कुछ लोग हैं जो कृष्ण की भक्ति करते हैं, परंतु अनन्य भाव से नहीं। अनन्य भाव किसे कहते हैं? न अन्य इति अनन्य, कृष्ण के अलावा कोई नहीं, बस इसे कहते हैं अनन्य भाव। और आज संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण की भी भक्ति करते हैं, गणेश चतुर्थी आ गई तो गणेश जी, गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास है? कहते हैं किसी को नाराज नहीं करना है, यहां भी जाएंगे वहां भी जाएंगे, चलो इस्कॉन में भी जाकर देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। तो सब जगह पर घूमते रहते हैं, इसे अनन्य भाव नहीं कहा जाता है। अनन्य भाव मतलब मात्र कृष्ण ही, न अन्य। इसलिए शुद्ध भक्ति की व्याख्या देते हुए रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में कहा, अन्या विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म घनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्त किसे कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य किसी की अभिलाषा न रखे, किसी की, मात्र कृष्ण उनके लिए, इसे कहते हैं अनन्य भाव। तो साधु उसे कहते हैं जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति करे, मात्र कृष्ण की भक्ति। और ये कुर्वन्ति दृढ़ाम, और किस प्रकार कहते हैं? दृढ़ रूप से। आया राम गया राम नहीं, चलो आज समय है तो प्रवचन में जाकर आते हैं, कल नहीं जाते, इसे आया राम गया राम कहते हैं। दृढ़ रूप से भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो दृढ़ रूप से मेरी भक्ति करते हैं। कभी कभी होता है कि दृढ़ रूप से भक्ति करने में घर वाले हमसे नाराज हो जाते हैं, आप लोगों से होते होंगे। 100% मैं मानता हूं कि यहां पर जो माताएं आती हैं, घर वाले नाराज होंगे, कुछ सास अपनी बहू से नाराज होगी तो ये तो चली जाती है सुबह उठकर, कुछ मां अपनी पुत्री से नाराज, कुछ पति अपनी पत्नी से नाराज, और पुरुषों में से भी कुछ ना कोई नाराज होंगे। भक्तों, एक हृदय की बात मैं आपसे कह रहा हूं, इस संसार में अन्य कोई भी कार्य करने में हमारे समाज के लोग हमें मदद करते हैं। स्कूल में पढ़ना हो तो हेल्प करते हैं, कमाना हो, ऑफिस जाना हो, हेल्प करते हैं, लेकिन भक्ति में मदद करने वाला इस संसार में कोई नहीं। एक सगा भाई भी अपने भाई को नहीं कहेगा कि मैं ऑफिस का काम संभाल लेता हूं, तुम जाओ वृंदावन, तुम सुन के आओ। सगा भाई भी आज इतना नहीं कर सकता। तो मानो दृढ़ भक्ति करने में कभी कभी हमारे अपने नाराज हो जाते हैं, और कभी कभी हमको भक्ति में से रोक देते हैं कि तुमको नहीं जाना है, मां मंत्र नहीं जपना है। तब भगवान कपिल देव कहते हैं, मत कृते, मेरे लिए त्यक्त्व स्वजन बांधवा, मेरे लिए जो अपने स्वजन और बंधु को त्यक्त, त्याग देता है, उसे साधु कहा जाता है। साधु उसे कहते हैं जो मेरे लिए किसी को भी त्यागने के लिए तैयार है। कल त्यागा ना कुब्जा ने अपने सेठ को, त्याग दिया मालिक कंस को, भाई को त्याग दिया। वैसे जो कृष्ण के लिए किसी को भी त्याग देता है उसे साधु कहा जाता है। और उतना ही नहीं, मत कृते त्यक्त कर्माणम, कर्म का अर्थ होता है बिजनेस, धंधा। मेरे लिए जो अपने बिजनेस को भी त्याग देता है उसे साधु कहा जाता है। जिनके लिए बिजनेस ही सब कुछ है, आज अर्थ एक जरूरत बन चुकी है, परंतु अपने अर्थ और स्वजन को भी जो त्याग देता है वही है सच्चा साधु। शास्त्र में अन्य एक जगह पर भगवान कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तत् धनम शने। मैं जिस पर कृपा करता हूं ना, भगवान इस संसार में अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? कहते हैं तस्या अहम अनुग्रहणामि, मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, और उस कृपा से क्या होता है? हरिष्ये तत् धनम शने, उस भक्त का सारा धन लूट लेता हूं, खाली हो जाता है वो भगत। होता है ना, संसार में देखा गया है, भक्ति में आने से पहले व्यक्ति बिजनेस में रचा पचा बहुत पैसे कमाता है, लेकिन भक्ति में आने के बाद धंधा मंदा हो जाता है, क्योंकि अब उसका मन धंधे में नहीं लगता है, अब उसका मन भागवत और गीता में लगता है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हो रही है। भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसका धन छीन लेते हैं, हरिषे तद्धनम। और कहते हैं उसके ऊपर मैं दूसरी कृपा क्या करता हूं, उसके स्वजनों के साथ झगड़ा करा देता हूं। क्या ये कृपा है? परंतु भगवान जितने टेढ़े हैं उनकी कृपा उतनी ही टेढ़ी है। और ये होगा, कुछ भक्तों के जीवन में हो चुका है और कुछ के जीवन में आएगा, तैयार रहिएगा। भगवान की पहली कृपा धन खाली हो जाएगा, कृष्ण की दूसरी कृपा अपने ही स्वजनों के साथ झगड़ा हो जाएगा। होता है ना, भक्त करने वाले के समाज वाले कहते हैं अरे ये तो हमारे सामने देखता भी नहीं है, ये तो हमको फोन भी नहीं करता है, बड़ा भगत बन गया है। समझ वाले कहते हैं भक्त के मन में ऐसा नहीं होता है, भक्त का मन तो भगवान में लगा रहता है, इसलिए हम लोग स्वजनों के पास जाना भूल जाता है, परंतु लोग वैसे झगड़ा कर रहे हैं। परंतु भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में भी धन चला गया, स्वजनों के साथ झगड़ा हो गया, फिर भी यदि वह भक्त मेरी शरण को पकड़ के रखे, वह भक्ति शुरू रखता है, तो मैं उसे ऐसी वस्तु देता हूं देवानाम अपि दुर्लभम, जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा वैकुंठ धाम प्रदान कर देता हूं। अब उस वैकुंठ धाम को प्राप्त करने के लिए भाई कुछ तो छोड़ना होगा ना। तो ये है भगवान की। तो भगवान कपिल देव कहते हैं मत कृते त्यक्त कर्माणम, जो अपने भौतिक कर्मों को छोड़ देता है, और त्यक्त सजन बांधवा, अपने स्वजन और बंधु को, वो है वास्तव में सच्चा साधु। तब मानव देवूत ने कहा कि प्रभु आपने तो साधुओं के बहुत सारे लक्षण गिनाए, और हो सकता है ये सब मुझे याद न रहे, जैसे यहां आने वाले को कुछ याद नहीं था, तो अब सार रूप से बता दीजिए कि साधु जो होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय किस में वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं, अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय कहां लगाते हैं? अपनी पत्नी को प्रसन्न करने में या ऑफिस में? ज्यादा से ज्यादा अपना समय कहां व्यतीत करते हैं? तो भगवान कपिल देव अब साधु का मुख्य गुण बता रहे हैं। एक साधु का, एक भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है? 23वें श्लोक में कहते हैं मदाश्रया कथामृष्टा श्रुणवंती कथयंती च। साधु का सबसे बड़ा गुण, और एक साधु अपना सबसे ज्यादा समय मद आश्रया, मद कथा, मेरी कथा श्रुणवंती, मेरी कथा सुनने में बिताता है। सीधा सीधा कह दिया, साधु किसे कहते हैं? जो ज्यादा से ज्यादा मेरी कथा सुने वे सबसे बड़ा साधु है। और कथयंती, और जो ज्यादा से ज्यादा कथा करे, भगवान के गुण रूप लीला और भगवान का नाम जपे, कथयंती का अर्थ है बोलना, श्रुणवंती का अर्थ है सुनना, तो जो ज्यादा से ज्यादा कथा सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा कथा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो है सबसे बड़े साधु। और साधु अपना, अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय श्रुणवंती कथयंती च, सुनने में और बोलने में निकालते हैं, कथा करने, इसे साधु कहते हैं। देखिए साधु बनने के लिए कथा सुनना होगा। आप कथा इसी प्रकार कथा सुनते रहोगे ना, तो जीवन में कोई ग्लानी दुख, ये ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रहेगा। कथा सही है, दुर्गुण निकलते हैं, तो सुनते सुनते वो व्यक्ति वास्तव में शुद्ध भक्त बन जाता है। और एक गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्य को सुनाए। गुरु का सबसे बड़ा कर्तव्य कि बस वो सुनाते रहे, कथा करते रहे, क्योंकि गुरु अपनी वाणी से ही शिष्य को सपोर्ट कर सकता है। गुरु के पास ऐसा कोई जंतर मंतर नहीं है, गुरु वाणी से ही अपने शिष्य का उद्धार कर सकता है। इस प्रकार श्रुणवंती कथयंती, जो ज्यादा से ज्यादा कथा सुने, ज्यादा से ज्यादा कथा करे, वो सबसे बड़ा साधु है। और यहां पर एक च शब्द आया है, च का अर्थ होता है इत्यादि, एटेस्ट्रा वगैरह, तो च का अर्थ है अनुमोदंती। जो मेरी कथा सुनते हैं, जो मेरी कथा करते हैं और जो मेरी कथा का अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन माने, मान लो कुछ लोग यहां पर कथा में नहीं आ सकते हैं, कथा बोल नहीं सकते हैं या कथा सुन नहीं सकते हैं, अपने ऑफिस शुरू है तो ऑफिस में बैठे हैं, परंतु अपने ऑफिस में बैठे बैठे यह कह दे ठीक है भाई मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, परंतु इसकोन में ये जो भक्त कथा सुन रहे हैं ना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतना ऑफिस में बैठे बैठे इतना कह दे कि नहीं ये लोग जो भक्ति कर रहे कथा सुन रहे बहुत अच्छा है, तब भी वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएगा। परंतु दुर्भाग्य आज का मनुष्य यह भी नहीं कर सकता, कहते ये लोग पागल हो गए हैं, एक बोल रहा है और सैकड़ों सुन रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अनुमोदन भी नहीं कर सकते, कम से कम खुद तो नहीं कर सकते, दूसरों की प्रशंसा भी नहीं। कहते लंबे लंबे तिलक करके निकल जाते हैं, हाथ में झोली माला टांग कर, परंतु अनुमोदन करने वाला भी साधु है। देखिए साधु का कभी भूतकाल नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग भक्ति में आते हैं, कथा सुनते हैं, माला जपते हैं, तो कहते हैं हाँ सो बिल्ली मालकर मारकर नहीं सो चूहे मारकर बिल्ली चली हज को है? पहले मेरे साथ शराब पीता था, मांस खाता था, ये करता था, अब बहुत बड़ा साधु बन रहा है। अरे भूतकाल में उसने जो भी, अरे हजारों का खून भी कर दिया हो, वेश्यागमन किया हो, कैसा भी पापी क्यों ना हो, लेकिन वह कथा सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, वह साधु है। साधु का भूतकाल नहीं, साधु का वर्तमान काल देखा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत सु दुराचारो, दुराचारी नहीं सु, सुष्ठु रूपेण दुराचारी, कितना भी बड़ा दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, यदि अनन्य भाव से मेरा भजन करता है साधु रेव समन्तव्य, उसे साधु समझना। मैं कहता हूं कि वह साधु है, तुम लोग क्या कहोगे? भगवान उसे साधु कहते हैं, सम्यक व्यवस्थित हो इसे, क्योंकि अब पूरा पूरा मुझ में लग चुका है। तो शुणवंती कथा मृष्टा, मृष्टा का अर्थ होता है मधुर। मान लो भगवान कपिल देव ने कहा कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो साधु होते हैं, वे निरंतर मेरी कथा सुनते हैं और मेरी कथा बोलते हैं, तब देवूत ने पूछा होगा आपकी कथा निरंतर सुनने में अरुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है? तब भगवान कपिल देव कहते हैं मृष्टा मद कथा मृष्टा, मेरी कथा कैसी है? कहते मधुर है, इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, किसी को उबन नहीं हो सकती है। और इसी के साथ साधु का अगला गुण बताते हैं, तपंती विविधा तापा, अनेक तापों को, अनेक दुखों को वह सह लेता है, तपस्या करता है। साधु जो होता है वह भोगी नहीं होता, वह तपस्वी होता है। एकादशी व्रत का पालन करना, निर्जला करना, सुबह जल्दी जग जाना, यह सबसे बड़ी तपस्या। तो साधु तपस्वी होता है, विविधा बहुत प्रकार की वह तपस्या करता है। तो एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता। तो इस प्रकार भगवान कपिल देव साधु का गुण कहा कि मां कितना गुण सुनाऊं, परंतु साधुओं में जो मुख्य मुख्य गुण है मैं आपको सुना चुका हूं। और यदि कोई ऐसे साधुओं का संग करता है तो एते साधव साध्वी, हे साध्वी, हे मां, सर्व संग विवर्जिता, यदि ऐसे साधुओं का संग करते हैं तो इस संसार की सभी आसक्ति से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। संग स्तेश्वत ते पार्थम संग दोष हरा हिते। ऐसे साधुओं का संग करने से सभी आसक्ति और सभी दुख से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, सभी दोष और आसक्ति से तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसके साथ साधु संघ का लाभ क्या होता है? साधु संघ में न जाने ऐसा क्या होता है जिसे इनकी बहुत महिमा है, क्योंकि सभी शास्त्र में कहते हैं साधु संग सर्व शास्त्र कई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। एक लव सेकेंड का 16वां हिस्सा भी यदि साधु संग कर लिया तो समस्त सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। तो साधु के संग में क्या होता है? तब भागवत का प्रसिद्ध श्लोक प्रायशील प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में से कोट करते हैं। भगवान कपिल देव कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर नरसायणा कथा तज्जोषणादा शपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमीष्यति। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। हे मां, आप जैसे ही सताम साधुओं का संग करोगी, साधुओं का प्रकृष्ट रूपेण संग होने से मम वीर्य संविदो, मेरे वीर्य की, मेरे पराक्रम की चर्चा होगी। साधुओं के संग में क्या होता है? साधुओं के संग में एक ही चीज होती है, वह मम वीर्य संविदो, भगवान के गुण रूप लीला की कथा। जिस संग में कृष्ण के गुण रूप लीला की कथा हो वही संग साधु संग है। और कई लोग एकत्रित होते हैं और भगवत कथा न हो और मात्र दुनिया की चर्चा हो तो उसे साधु संग नहीं कहा जाता। तो साधुओं के संग में मेरे गुण रूप लीला की चर्चा होती है और वे जो कथा है रित कर्ण, हृदय और कर्ण के लिए आनंदमय है। मेरी कथा श्रुत मधुर भी है, कर्ण को भी आनंद देती है, और यदि उसका अर्थ समझ में आ जाए तो रीत मधुर हृदय को भी आनंद देती है। और मेरी कथा जो है रसायन के समान है। रसायन माने दवाई, औषधि, मेडिसिन। मेरी कथा औषधि के समान। प्रश्न हो सकता है, अरे भाई हम तो बीमार नहीं है, औषधि क्यों ग्रहण करें? हम सब लोग बीमार हैं। संसार में तो छोटी मोटी बीमारी होती है, परंतु हम सबको एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है और इस बीमारी का नाम है भव रोग। बहुत बड़ा रोग है ये। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माता के गर्भ में आना, 84 लाख के चक्कर में घूमना, इसे भव रोग कहते हैं। भव नाम का रोग लगा है, टाइफॉइड मलेरिया जॉन्डिस। इस रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर की साधारण दवाई ले लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं। परंतु भव रोग से मुक्त होना है मत कथा रूपी रसायन। मेरे कथा रूपी इस दवाई को यदि कोई पी लेता है, अर्थात मेरी कथा यदि कोई सुन लेता है, तो वह व्यक्ति सदा सदा के लिए इस भव रोग से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। रसायन। और इतना ही नहीं, तज्जोषणादास अपवर्ग वर्तमानी। यदि कोई व्यक्ति मेरी कथा बारंबार सुनता रहे तो उसे अपवर्ग की प्राप्ति होती है। अपवर्ग माने भगवान का धाम। और इतना ही नहीं, मेरी कथा सुनते रहने से श्रद्धा, रति, भक्ति ये सब प्राप्त हो जाता है। यह है मेरी कथा का लाभ। तो साधु का संग करके मेरी कथा सुननी चाहिए। कथा सुनकर क्या होगा? भक्त्या पमंजा तविराग इंद्रियात दृष्ट श्रुतान द्रचननानु चिंतया। मेरी कथा सुनने से, मेरी लीला का चिंतन करने से व्यक्ति को इस संसार के भोगों से वैराग्य हो जाता है, यहां तक कि स्वर्ग इत्यादि अलौकिक भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। अतः उस भक्त का मन पूर्ण रूप से मुझ में एकाग्र हो जाता है। और मन जब मेरे में एकाग्र हो जाता है तब वह व्यक्ति इस प्रकृति के गुणों से उत्पन्न जितने भी विषय हैं उनका त्याग करके भक्ति के द्वारा वे मुझ में अपना समर्पण कर देता है। और अपना समर्पण करके वे मुझ कृष्ण अंतरात्मा का दर्शन कर सकता है। और वह दर्शन इसी जन्म में, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनते हैं इह लोके, भगवान कपिल देव कहते हैं कि इसी लोक में इसी जन्म में मेरी कथा सुन सुनकर मेरी भक्ति करके व्यक्ति जीते जी इन्हीं आंखों से मेरा दर्शन कर लेता है। कभी कभी होता है मरने के बाद भगवान मिलेंगे, नहीं, यदि इस प्रकार से भक्ति करते हैं तो मरने के बाद तो भगवान मिलते ही हैं, परंतु जीते जी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान चाहते भी हैं कि मैं मेरे भक्तों को दर्शन दूं। देखिए, हमें भगवान को प्राप्त करने की जितनी इच्छा है उसे करोड़ों गुना भगवान को हमें प्राप्त करने की इच्छा है। कृष्ण चाहते हैं कि ये भक्त मेरे पास आए, मेरे साथ आदान प्रदान करे, कृष्ण चाहते हैं। और कृष्ण की मूल इच्छा ये है कि कोई भक्त मुझे अपना पुत्र माने, कोई भक्त मुझे अपना सखा माने, कोई भक्त मुझे अपना प्रियतम माने, कृष्ण चाहते हैं। प्राय संसार में सब लोग सकल संसार करे विधि भक्ति, प्राय संसार में सब लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, बहुत ग्रेट समझते हैं, ईश्वर समझते हैं। वास्तव में भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। कृष्ण को कोई भगवान कहे तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। ये मैं बहुत हाई लेवल की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि भक्तों का समाज बैठा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर कोई एक व्यक्ति आए, उसे पूछा जाए कि ये कौन है, तो कहें कि ये मनुष्य है। अब मनुष्य मनुष्य है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु वह कहे कि नहीं, ये तो मेरा प्राण प्रिय सखा है, तब उसे कितना अच्छा लगेगा। वैसे भगवान तो भगवान है ही, परंतु कृष्ण को यदि कोई सखा कहे, अपना पुत्र कह दे, चैतन्य महाप्रभु यही ज्ञान देने के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कहते हैं, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अति दीन क्या ज्ञाने करे लालन पालन। यदि कोई भक्त मां बनकर मुझे पुत्र मानती है और वात्सल्य भाव से मुझे अभिषेक कराती है, मुझे वस्त्र पहनाती है, और यह करते हुए कभी कभी मुझे डांट भी देती है, तो उस भक्त की डांट में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। भगवान चाहते हैं, सखा शुद्ध ज्ञाने करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोक तुम्ही आमी सम। कोई सखा समझकर मेरे साथ साख्य भाव का आदान प्रदान करता है, कृष्ण कहते हैं कोई मुझे सखा मानता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। और उसमें भी धक्का मार कर कह देता है, जाओ मैं, हम तुम्हें हमारे साथ नहीं खिलाएंगे, नहीं खेलने देंगे, तब तो मुझे और आनंद आता है। और प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, वेद स्तुति हते हरे मोर मन। और यदि कोई मेरी प्रिया बनकर मुझे माधुर्य भाव में प्रेम करती है, और उस प्रेम में कभी कभी वह प्रिया मुझे डांट दे, गाली भी दे दे, उस गाली में मुझे बहुत आनंद आता है। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे प्रेम करें। ब्रज में तो यहां तक कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गाली। जो आनंद, भगवान कहते हैं कि जो आनंद मेरे भक्तों के मुख से गाली में आना आता है, ब्रज के भक्तों की गाली सुनने में मुझे जो आनंद आता है वह आनंद जय जगदीश्वर में नहीं आता है। भक्त जनों के संकट दूर कर, भगवान चाहते हैं कि हम लोग उनसे प्रेम करें। भक्तों, ये अंतिम क्षण चल रही है सुबह के प्रवचन की, मैं उनमें सार आपको बताऊंगा। अपने मुख से भगवान बता रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि लोग मुझसे प्रेम करें। और देखिए, हम भगवान से प्रेम करेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे, और हम एक कदम चलेंगे वो हजार कदम चलेंगे। भगवान चाहते हैं हम उनसे प्रेम करें, और हम उनसे प्रेम करके ही सुखी हो सकते हैं। विचार कीजिए भक्तों, बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत सब कार्य छोड़कर भगवान से प्रेम करने लगेगा, क्योंकि कृष्ण से प्रेम होना यही है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि। आप यदि करोड़पति बन गए हैं, बहुत बड़े ऐश्वर्यशाली बन गए, लेकिन मरोगे, मरने के बाद एक रुपया भी आपके साथ नहीं आएगा, और मरने के बाद दूसरा जन्म कहीं भी हुआ तो वो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा कि जब चलो भाई पिछले जन्म में 500 करोड़ छोड़कर गया है तो वहां जमा करा दो, नहीं, वहां पर जीरो से शुरू होगा। और क्या पता मरने के बाद गधे बने उसी गांव के। तो भक्तों, यदि जीवन में कमाना ही है तो कृष्ण प्रेम कमाइए, कमाना ही है तो भगवान का नाम कमाइए, प्राप्त करना ही है तो कृष्ण को प्राप्त कीजिए, क्योंकि आखिर कृष्ण ही हमारे सब कुछ है और वही हमें सब कुछ दे सकते हैं। संसार के जो संबंध क्षणिक हैं, आज हैं कल नहीं है, आज साथ में हैं कल बिछड़ने वाले हैं, परंतु कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है नित्य संबंध है। तो कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़िए। जन्माष्टमी आ रही है और एक मान्यता है कि जन्म के दिन व्यक्ति बहुत खुश होता है, अन्य दिन हम उसे जो इच्छा करे चाहे दे या न दे, परंतु बर्थडे के दिन जो भी मांगेंगे मिल जाता है। जन्माष्टमी आ रही है, आप सब लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज हम आपके चरणों में कामना कर रहे हैं कि आप हमें कृपा दीजिए कि हम आपसे प्रेम कर सकें, जैसे यशोदा ने आपसे प्रेम किया है, जैसे नंद बाबा ने आपसे प्रेम किया है, जैसे ब्रज के सखाओं ने आपसे प्रेम किया, जैसे गोपियों ने आपसे प्रेम किया है, जैसे राधा ने आपसे प्रेम किया है। अरे उस प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा, एक करोड़वा भाग भी यदि हमारे हृदय में आ गया तो हम हमारे जीवन को धनिया की धन्य समझे। भगवान के चरणों में यह प्रार्थना करनी चाहिए, और हमारे जीवन के सारे कार्य बस इसीलिए होने चाहिए कि कृष्ण का प्रेम मिल जाए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे कृष्ण आप सबको अपना प्रेम प्रदान करें, और आप सब भगवान से कृष्ण का प्रेम करते रहे। और इस जन्माष्टमी के अवसर में कृष्ण से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी खुशी के लिए हम इसी प्रकार आपके गुणगान गाते रहें, भक्तों के बीच में आपकी कथा सुनाते रहिए, बस इसी प्रकार हमारा जीवन बीत जाए, मृत्यु आ जाए, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। इसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करते हुए और आप सब के आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। सुबह का सत्र आज यहाँ पर समाप्त होता है, अब राधा दामोदर की कृपा रही तो फिर कभी हम यहाँ पर आएंगे, मिलेंगे और कथा कीर्तन करेंगे। परंतु आप सब भक्तों के चरणों में प्रार्थना और क्षमा याचना कि यह 6 दिनों में यदि कुछ कठोर शब्द निकल गया हो, मानता हूँ कि हमारी वाणी बहुत कठोर है, कभी किसी के हृदय में कुछ ठेस पहुँच गई हो, कुछ दुख लगा हो, तो अपना पुत्र समझकर, छोटा भाई समझकर आप क्षमा कर दीजिएगा, और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि इसी प्रकार हम भक्ति करते रहें और भक्तों को और भगवान को प्रसन्न करते हुए भगवान के गुणगान गाते रहें। हरे कृष्ण।